आचार्यों का यही मत है, प्रसाद खाओ, आनंद में मगन होकर कीर्तन करो, बहुत थोड़ी कथा सुनो। चेंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, लिटिल फिलॉसफी, लिटिल फिलॉसफी नहीं, प्रभुपाद तो सीधा सा ऐसा। चेंटिंग, डांसिंग, सभी लोग नाचना चाहते हो ना, गाना चाहते हो ना, यही सब करते हो ना, नाचना गाना और खाना, यही तीन तीन काम है ना, यही करो, लेकिन करो भगवान के लिए, लेकिन थोड़ा भगवान की कथा सुन लिया करो। तो थोड़ी कथा सुनेंगे, जोड़ लीजिए हाथ भगवान के सामने, कहाँ है भगवान आप पूछेंगे, आप सबके हृदय में भगवान बैठा हुआ है, कहीं दूर नहीं है, सबकी दिल में भगवान है, कोई भी गरीब नहीं है। भगवान जिसकी दिल में, वो गरीब कैसे हो सकता है, हो सकता है गरीब दिल में? जिसकी दिल में भगवान है ये पूर्ण विश्वास हो जाए तो फिर दुनिया में कोई कमी है क्या? यही प्रभुपाद जब किसी को संन्यास देते थे, जब कहते थे तुम कभी मत समझना कि तुम अकेले हो, सन्यासी का मतलब सबको छोड़ देना, तुम ये समझना कि भगवान और तुम्हारे गुरु तुमसे कभी अलग नहीं हुए हैं। और फिर प्रभुपाद ने कहा, मैंने मेरे जीवन में एक क्षण भी ऐसा नहीं देखा है जब मेरे गुरु को मैंने मुझसे दूर पाया हो, हर समय वो मेरे संग है। और फिर भगवान तो सदा नित्य सबके हृदय में विराजमान है। आप सबके हृदय में है कि नहीं है? लेकिन पता नहीं है, भगवान के वचन है कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं। तो आइए, कहीं ढूंढना नहीं है, आपके हृदय में बैठे हैं। और इस मंत्र का उच्चारण मेरे साथ करके आप देख लीजिए कि आपका हृदय क्या कहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय।
देवकी नन्दनाय च।
देवकी नन्दनाय च।
नन्दगोपकुमाराय।
नन्दगोपकुमाराय।
गोविन्दाय नमो नमः।
गोविन्दाय नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य।
जय श्री कृष्ण चैतन्य।
प्रभु नित्यानंद।
प्रभु नित्यानंद।
श्री अद्वैत गदाधर।
श्री अद्वैत गदाधर।
श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद।
श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
हरे राम हरे राम।
हरे राम हरे राम।
राम राम हरे हरे।
राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा। भगवद गीता में एक श्लोक है, महात्मानस तो माम पारथ देवीम प्रकृतिम आश्रितः। महात्मानस तो माम पारथ देवीम प्रकृतिम आश्रितः। जो महात्मा होते हैं वो मेरी दैवी प्रकृति अंतरंग शक्ति के आश्रित होते हैं। तो दुनिया किसके आश्रित है? बाहरंग शक्ति के। इसका दूसरा अर्थ है कि दुनिया बाहरंग शक्ति के आश्रित है और जो महात्मा है वो मेरी अंतरंग शक्ति के आश्रित है। अंतरंग शक्ति भगवान की कौन है? राधा रानी। भगवान की अंतरंग शक्ति जो राधा रानी के आश्रित है वो महात्मा है। इसलिए प्रभुपाद जी के पिताजी सब साधु जो भी देखते थे उसको पकड़ के अपने घर ले जाते थे और फिर क्या कहते थे, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा राधा रानी का भक्त बने, यही कहते थे ना, जिसको भी ले जाते थे आ गया जा भाई उधर जा इसके पास नेमशेना के पास जा, उधर बहुत ऋषि है कोई न कोई तुम्हारा उद्धार करेगा। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद के पिताजी की प्रार्थना हर एक साधु को कैसा भी मिल जाए, आओ आओ भोजन पाओ, ऐसे नहीं पहले कहते आशीर्वाद, पहले कहते भोजन पाओ, खिलाने पिलाने उसके बाद आशीर्वाद अंदर से निकलते, नहीं तो निकलती ही नहीं है। एक तो माता जी को इतना उत्साह था, साधु जा रहा था उसके लिए गरम गरम हलवा बनाया ऐसे उठा के दे दिया, और करपात्री महाराज था बर्तन नहीं उठाता था, हाथ में डाला हाथ तो जल रहा था, उसने मुंह में डाला मुंह जल गया, खाने के बाद मत बोले आशीर्वाद दीजिए, बोला आशीर्वाद का मशीन ही जल गया, आशीर्वाद जबान से देना था वही जल गया तुम्हारा हाल, तो ऐसा भी प्रसाद नहीं हो कि आशीर्वाद का जबान ही जल मशीन खराब हो जाए। चिल्लाओ लेकिन भोजन के बाद के राधा रानी के भक्त बने। अब ये एक संक्षेप है कि महात्मा कौन बनेगा जो राधा रानी का आश्रित है। महात्मानस्त माम पार्थ देवीं प्रकृति माश्रित है, और फिर क्या भजत अनन्य मनसो ज्ञात्मा भूतादि अव्ययम, है ना। तो महात्मा वो है जो अंतरंग शक्ति के आश्रित है और सारी दुनिया बाहरंगक शक्ति के आश्रित है। तो हम आचार्य उनको कहते हैं, हमारे गुरु वर्ग जो है जो जो है वो किसके आश्रित थे। अब हम बहुत दूर जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण तो भगवद गीता के माध्यम से पूरी दुनिया जानती है कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता संसार को दी, ये तो ठीक है कि नहीं। और भगवद गीता सब शास्त्रों का सार है, ऐसे भी शास्त्रों के अंदर मत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण दोबारा वापस आज तक अकेले नहीं आए, अपने साथ राधा रानी को लेकर आए। आई तो राधा रानी पहले भी थी जब श्री कृष्ण अवतार लेकर आए थे, लेकिन राधा रानी तब भगवान से भिन्न रूप में आई थी, लेकिन दोनों आत्मा एक थी लेकिन रूप अलग थे, देह अलग थे। राधा रानी वृषभानु के घर में रहती थी, कीर्तिदा माँ के घर में रहती थी, और नंद बाबा और यशोदा के घर में कृष्ण रहते थे, मिलते तो थे लेकिन आए थे तो दोनों थे। लेकिन अब भगवान ने कहा कलयुग के लोग जो हैं वो नहीं महात्मा बन के अंतरंग शक्ति का शरण ले पाएंगे, क्योंकि लोग बहुत संसार के अंदर असल में देखा जाए तो कान पकड़ के कहना पड़ता है कि अंतरंग शक्ति राधा रानी कोई साधारण स्त्री तो है नहीं संसार की, वो तो भगवान की शक्ति है, भगवान के अंग से प्रकट हुई है, भगवान के इच्छा की और भगवान के अंग से राधा रानी प्रकट हुई। कोई राधा रानी का प्रकट्य गोलोक धाम में होता है, संसार में कोई लड़की होकर प्रकट नहीं हुई है, लेकिन दुनिया के लोग उसको लड़की की नजर से देखते हैं, और कलयुग के लोग तो केवल लड़की की नजर से ही देखते हैं सबको, उनकी बुद्धि है ही नहीं कुछ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब कलयुग के अंदर आने का संकल्प किया तो राधा रानी को अपने अंदर वापस समा लिया, अपने अंदर वापस समा लिया, तो दोनों एक हो गए। और तब चैतन्य महाप्रभु गौरंगा महाप्रभु बनकर आए तो उन्होंने वो राधा रानी की कृपा, महात्मा कौन बने जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जो राधा भाव में आए उनका शरण लिया वो महात्मा बने, बाकी सब दुरात्मा रह गए। सीधा सा कलयुग में सीधा ये इसका उत्तर है। इसके बाद जिसका भी नाम लो, कुछ भी आनंद हो या दुरानंद मानंद कानंद सानंद कुछ भी हो, ये सब दुरात्मा है, क्योंकि वही केवल राधा रानी को अपने आप में सम्मिलित करके श्री कृष्ण आए थे, और जिन्होंने उनका शरण लिया वही महात्मा रह गए। ये सत्य है, कलयुग में और कोई रास्ता है ही नहीं।
कलयुग में पंच बहुत होंगे, मंदिर मठ बहुत होंगे, लेकिन राधा रानी का आश्रित लेने वाले महात्मा दुर्लभ है भी नहीं। ऐसा महात्मा दुर्लभ नहीं मिलेगा, असंभव है। इतने सारे कथाएं हो रही, इतने सारे मंदिर बने हुए, इतने सारे प्रवचन हो रहे, आदमी उससे ज्यादा बदमाश होते जा रहे हैं। 500 रुपए वाले फुट को 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं इतनी कथा सुनने के बाद, और सब सभी वही बदमाश है जो कथा कराते हैं। ये मैं झूठ बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। ये बड़े बड़े कथा लाखों अड़वारी कराने वाले हैं, वही तो ये सबको सत्यानाश कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कैसे कैसे ये धर्म का प्रचार हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा? दया कहां से आएगी, प्रेम कहां से आएगा? ये प्रेम और दया इसको कहते हैं क्या जो हमारे चारों ओर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं, सत्य नहीं है। इसका मतलब ये सब धर्म के नाम में अधर्म हो रहा है। इसमें कोई भी महात्मा नहीं है, किसी ने भगवान के अंतरंग शक्ति का शरण लिया ही नहीं है। ये भगवान महाभगवान की बाहरंग शक्ति, बाहरंग शक्ति से विमोहित हम सभी मूर्ख, वो तो मोहित है, हम कोई मोहित ही कर रहे हैं। तो किसने राधा रानी का सीधा शरण लिया, देवीं प्रकृति आश्रित कौन हुआ? पहला गोस्वामी जिसने चेतना महाप्रभु का शरण लेकर दर्शन किया, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी 9 साल का छोटा सा बच्चा, बेटा किसका था? दुनिया के उस वक्त के उस अपने क्षेत्र के सबसे बड़े धनी का। ऐसे नहीं घर से भूख से कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए मंदिर में जाके रहा कि 2 टाइम की रोटी मुफ्त मिलेगी, नहीं। उसका बाप लाखों रुपये महीने का, जिसके पास 100 रुपये पैसे वाले नहीं, नोट आपके पानी उसके ऊपर गिरे तो भीग जाए तो किसी काम का नहीं है, सोने की मुद्राएं थी। जिसके बाप की सोने की मुद्राएं, लाखों रुपया जिसकी आवक थी, वो चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाके देवम प्रकृतिम आश्रित चैतन्य महाप्रभु का कृपा पात्र बने, पहले गोस्वामी। और वो हमारे गोस्वामी कैसे हैं? वैराग विद्या, निज वैराग विद्या। चेतन महाप्रभु आए थे निज वैराग विद्या देने के लिए, लाखों की संपत्ति को पीछे छोड़ के, और जगन्नाथ के दरवाजे के ऊपर भिक्षा में चावल मांग रहे थे, उसके ऊपर ही चेतन महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुए। बोला ये वैसा की तरह खड़ा है, कौन देगा कौन नहीं देगा? कचरे में गिरे हुए चावल जो गाय भी नहीं खाती थी उसको उठा के जब समुद्र में धो के खाते थे, तब महाप्रभु भागते हुए जाए, अरे बोला ये से तुम चावल खा रहे हो, इतना बड़ा भोग लगा रहे हो, छप्पन मुझे बुलाते नहीं हो? उसके चावल खाने के लिए जैसे सुधामे के चावल कृष्ण ने खाए थे द्वारका में, ऐसे महाप्रभु ने जाके रघुनाथ दास के चावल हाथ से पकड़ के जबरदस्ती खाए थे। तो ऐसा वैराग विद्या हमारे वैराग के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग के आचार्य हैं, जिसके जीवन ऐसा वैराग का है कि ब्रज में रहे तो इतने दोने के अंदर छाछ ही पीना, एक टाइम ही पिया, और एक बार किसने कहा दोना थोड़ा बना बना, जैसे हमारे लिए कटोरा बड़ा आता है सबके लिए छोटा आता है, वो दोना फेंक के बोला वो छोटा वाला दोना ही तो उतना ही पीना। और फिर 1000 वैष्णों को रोज दंडवत करते थे, 1000 वैष्णों को रोज दंडवत करना है और छाछ पीना है, यहां तो गुलाब जामुन रसमलाई खा के पनीर सब्जी, दंडवत किसी को भी करने के लिए तैयार नहीं है। डंडे ऐसे हो गए हैं, मुस्टंडे हो गए हैं, खा खा के कुछ दंडवत करने को तैयार नहीं है। ये पहली इस्कान की शुरुआत ऐसे थी कि सुबह मंगल आरती मंदिर में जाते थे, जो भक्त होते थे पहले उसको प्रणाम किया जाता था, पहले वैष्णव प्रणाम पद्धति हुआ करती थी, अंदर जाते ही पहले प्रणाम हुआ करता था। अब तो दर्शन नहीं खुले हैं तो किसी को किसको प्रणाम करें, यहां तो कोई नहीं, एक सारे वैष्णव खड़े। मैं मुस्टंडा हूं, दंडवत नहीं करूंगा। कहां चरित्र चला गया हमारा? अब वो रघुनाथ दास ने 1000 दंडवत रोज करते थे, सनातन गोस्वामी ने एक दिन देखा बाहर धूप में मई जून में बैठे हुए हैं, पीछे से सनातन गोस्वामी आया, देखा तो जो उन्होंने दर्शन देखा तो वो तो कांप गए आनंद में और जाके रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़ के कहा, तुम झोपड़ी बना के क्यों नहीं रहते हो, पेड़ के नीचे क्यों नहीं रहते हो, तुम्हारे गर्मी से तुमको बचाने के लिए पूरा घरानी अपना आंचल तेरे ऊपर ऐसे खड़ा करके रखा है कि तेरे को गर्मी मत लगे, और जिसकी हम सेवा करते हैं उसको तुमने सेवा में लगा रहे हो। तब पहली बार साधु ने झोपड़ी थोड़ी घास की बनाई, राधा रानी स्वयं आके उसके उसको धूप से बचाए, कृष्ण उसको, वो शेर है तो उसके ऊपर डंडा उठाए खड़ा है कि शेर कहीं इसको दुख न दे, राधा कुंड के किनारे पे, इसको बोलते हैं मान वैराग आचार्य हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी। दूसरे गोस्वामी जो चेतन महाप्रभु के शरण में गए, सनातन गोस्वामी, वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त में, मुख्यमंत्री थे बंगाल के, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इससे आपको गौरव ये करना चाहिए जिस परंपरा के अंतर्गत हम श्री कृष्ण की एक भक्तों के भक्तों की भक्ति में लगे हैं, उसके आचार्य कोई महामंत्री था उसको अपने समय का, कोई वित्त मंत्री था, कोई बहुत बड़ा धनी था अपने समय में, कोई उनमें से ऐसा नहीं है जो साधारण व्यक्ति रहा हो, और न कोई स्ट्रीट का आदमी था, ये सब अपने वक्त के हाईली क्वालिफाइड आदमी थे जिन्होंने दुनिया का सब सुख देखा था, उसको तुच्छ मत, मंडलपति क्या थे, मंडलपति थे, मंडल किसको कहते, चार पांच डिस्ट्रिक्ट कठी होती है उसको मंडल कहते हैं आजकल, है ना, मंडल उसको कहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में पांच डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक जो कमिश्नर होता है मंडल होता है, वो मंडलपति थे, तुच्छवत, तो उसको तुच्छवत किसको कहते हैं बताएं, आदमी जाता है ना टॉयलेट के अंदर, उसके बाद स्टूल को मल को त्यागने के बाद उसको देखता भी नहीं है, कोई देखना चाहता भी नहीं है उसको, ऐसे संसार के सुख को मलवत त्याग दिया उसको बोलते हैं। तुच्छवत, तुच्छवत का मतलब उतना तुच्छ समझ लिया दुनिया के धन को। कितना धन था जिस दिन रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जेल से बाहर निकल के आ रहे थे, रूपा गोस्वामी ने चिट्ठी लिखी थी, स्वर्ण मुद्राएं बेअंताज थी, जो नाव भर के गए थे, एक नाव भर के सोने की मुद्राएं उनके पास थी, जो आधी रखी के गए थे किसी के पास कि ये किसी काम में लगा देना, कुछ रुपया पैसा नहीं था कि छोटा सा पर्स, आजकल वो ऐसे उठाते तब भी दिखाते कि इसके अंदर है, तुम्हारे अंदर है क्या, तुम्हारे पर्स के अंदर वो सोने की मुद्रा नाव भरी हुई थी जिसके पास, अरे एक रुपया बचा था उसके सेवक के पास, एक रुपया सनातन गोस्वामी के सेवक के पास बचा था सोने का, एक रुपया। सनातन गोस्वामी ने कहा, हाँ अभी तुम्हारे पास ईशान एक रुपया है क्या, बोला हाँ है, बोला तुम वापस जाओ, तुम मेरे साथ चलने के लायक नहीं हो, तुम एक रुपया रखते हो इसका मतलब तुम मेरे साथ जाने के लायक नहीं हो, तुम्हारे को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, एक रुपया के ऊपर विश्वास है कि ये रहेगा तुम खाओगे। ये सिद्धांत आचार्य है हमारे वैराग आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, सिद्धांत आचार्य सनातन गोस्वामी, उन्होंने सिद्धांत स्थापित किए हैं। और तीसरा दर्शन जिसने महाप्रभु का साक्षात शरण लेकर किया था, रूप गोस्वामी, वो रसाचार्य हैं, रसाचार्य जिन्होंने भगवत प्रेम के रस को भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में हमारे को दिया है, वो रसाचार्य हमारे रूप गोस्वामी रसाचार्य हैं, जिनको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, स्वयं राधा कृष्ण ने, स्वयं देवी प्रकृति जो है भगवान की, उसने शरण में गोद में बिठाकर और 10 दिन बैठकर प्रेम भक्ति का प्रवचन किया, भगवान ने बैठकर जिसको शिक्षा दी, और भगवान भी चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में अंतर क्या है, कृष्ण और चैतन्य, हरे कृष्ण जागते रहो, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कभी मैंने आपको एक बात बताई थी, ब्राह्मण सत्संग कर रहा था, बहुत बड़े प्रवचन करता था, मरने के बाद वैकुंठ में गया तो उसको अंदर जाने ही नहीं दिया, दरवाजा बंद कर दिया। बोला मैं प्रवचन करता था, रात को 10:15 बजे भी मैं बोलता रहता था। बोला नहीं, तुम्हारा टाइम नहीं। थोड़ी देर में एक आदमी को 11 बजे लेकर आए और वैकुंठ के दरवाजे खोले, उसको अंदर भर डाल दिया। ये ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया, उसने बोला क्या बात है, इसको अंदर डाल दिया, हम कितनी देर से बैठे हमको नहीं डाल रहे। बोला तुम्हें मालूम है कौन था ये? बोले बताओ कौन था, ऐसा कौन था हमसे बड़ा? बोला बस का ड्राइवर था। बोला बस के ड्राइवरों को वैकुंठ में जाने के लिए दरवाजा खुलता है कथा करने वालों को बाहर बिठा दे तो ये कौन सा न्याय? बोला सुनो आगे क्या लिखा है। रफ ड्राइवर था, इतना रफ बदमाश था कि बस में जो चढ़ते सब राम 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 करते, कोई नहीं सोता था, एक भी नहीं बस में कभी सोया। नाइट में जर्नी में भले बेद्वार का जाए तब भी राम राम करता जाता था। इसलिए इतने आदमी को जिसने भगवान का नाम जपाया उसके लिए देखूंगा। महाराज तेरी कथा में 4-5 तो रोज सोते थे। इसलिए उसके लिए वैकुंठ का दरवाजा, तो अब कोई सोता है तो मुझे डर लगता है कि दरवाजा बंद होगा, इसलिए जगाने के लिए चिल्लाना पड़ता है। तो भाई जागते रहो, नहीं तो हमारा आपका दरवाजा तो खुला रहे, हमारा बंद हो जाए। हरे कृष्णा। दो महीने सनातन गोस्वामी को बनारस में चैतन्य महाप्रभु ने बैठ के शिक्षा दी। तो जिनमें भगवान ने जिनको, जैसे अर्जुन को गीता भगवान ने सुनाई, तो आजकल भी गीता दुनिया के अंदर ऐसा शास्त्र है जिसमें कृष्ण का अर्जुन का फोटो, ऐसे चित्र सब जगह दिखेगा। और अर्जुन कृष्ण का सखा, सखा का मतलब जिसकी ख्याति, जिसकी ख्याति भगवान के समान हो जाए। कृष्ण का नाम लोगे तो अर्जुन का नाम आएगा, अर्जुन तो कृष्ण साथ में आएगा, सुधामा तो कृष्ण आएगा, उद्धव कहोगे तो कृष्ण आएगा। सखा उसको कहते हैं एक का नाम लेने से दूसरे का नाम अपने आप आ जाए। तो जिसको भगवान ने शिक्षा दी है वो महात्मा है। और ये हमारे जो गोस्वामी जिनका हम वर्णन कर रहे हैं, और फिर दक्षिण भारत के यात्रा के समय, फिर महाप्रभु जब जा रहे थे वृंदावन, पहले दक्षिण भारत के की यात्रा के समय छोटा सा, वो भी 8-9 साल का बच्चा, श्रीरंगम में, दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगम है, और उसके अंदर भगवान विष्णु जो है, ये भगवान विष्णु माँ कौशल्या और दशरथ जी के घर में इनकी पूजा होती थी अयोध्या में। ये वो ठाकुर जी हैं जिनकी पूजा अयोध्या में हुआ करती थी। और विभीषण को ये ठाकुर जी ले जाने के लिए दिया गया था, और ले जा रहे थे लंका, लेकिन जहां जहां श्रीरंगम में वहां पहुंचे, वहां से ठाकुर आगे गए ही नहीं। अभी भी आज ये मान्यता है कि विभीषण चिरजीवी है और आज भी वहां भगवान रंगनाथ के दर्शन करने और सेवा करने आता है, आज भी ये मान्यता है। तो वो था उस मंदिर में महाप्रभु चतुर्मासी के 4 महीना रहे थे, तब वेंकट भट्ट के घर में रहे थे जो पुजारी थे वहां के ब्राह्मण रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत। उनका बेटा 9 साल का 8 साल का छोटा सा, महाप्रभु से इतना प्रेम हो गया कि महाप्रभु ने उसको अपना शरण में ले लिया। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी आगे जाकर हुए। तो ये गोस्वामी दूसरा जो महाप्रभु के शरण में आए। और फिर वृंदावन जाते हुए जब महाप्रभु बनारस में आके रहे, तो वहां पहले महाप्रभु जब ग्रस्त आश्रम में थे, तब बांग्लादेश में प्रचार करने गए थे, तब वहां उनको मिले थे काशी शुक्ला, दो नाम क्या है, काशी मिश्रा, तपन मिश्रा और तपन मिश्रा और नहीं दूसरा भी एक नाम है, तपन मिश्रा चंद्रशेखर आचार्य चौथ, उन्होंने जाकर महाप्रभु से पूछा कहां जाए। बोला आप बनारस जाइए। वो बनारस में आए थे, उनके पुत्र रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो छोटा सा बालक वहां महाप्रभु के स्थान में। और वो जब महाप्रभु से मिलने गया था जगन्नाथपुर में, तब महाप्रभु ने कहा जाओ वापस, जब तक तुम्हारा माता पिता जीवित है उनकी सेवा करना, लेकिन रहना ब्रह्मचारी, जब वो भगवंत धाम चले जाए तब तुम वापस हमारे पास आना। साक्षात शिक्षा दी थी उसको। जीव गोस्वामी बहुत छोटे थे, उन्होंने महाप्रभु को दूर से केवल देखा ही था जब सनातन रूप गोस्वामी से मिले थे। तो ये 6 साक्षात चेतन महाप्रभु के शिष्य हैं जो राधा के भाव में आए थे, ये महात्मा हैं। इनके अंतर्गत ये हमारी संप्रदाय चल रही। तो ये हमको समझना चाहिए कि महात्मा कहते किसको है। महात्मानस्तु माम पारस देवीं प्रकृति माश्रित, जो भगवान की अंतरंग शक्ति के शरण में। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में हम हरे राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान के शरण में आप ही डाल सकते हैं और कोई रास्ता नहीं। ये हमारी रोज की प्रार्थना है, ये रोज की अप्लीकेशन है, ये रोज का हमारा भगवान को एक क्या कहते हैं आप अर्जी लगाते हैं कि हमारे को भगवान की सेवा में लगा। महात्मा कौन हो सकता है, किसको महात्मा कहते हैं? सततम कीर्तन यंतो माम, जो सतत, सतत का मतलब हर समय, सततम कीर्तन यंतो माम यततंश दृढ़ व्रत। कीर्तन तो रोज करता है लेकिन यतन बहुत करता है कि कहीं भी माया इस संसार में मेरे को धोखा दे सकती है। यतन शब्द बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। कीर्तन तो करते हैं लेकिन यतन नहीं करते, ये हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी है। यतन तस्य दृढ़ व्रता, यतन करते हैं कि कहीं भी दुनिया के अंदर कभी भी फिसल जा सकते हैं, कभी भी फिसल सकते हैं, इसलिए दृढ़ व्रत धारण कर लेते हैं। कहना क्या दृढ़ व्रत धारण कर लेते हैं, मैं रोज सुबह उठूंगा, सवेरे किसी वक्त भी उठूंगा, भगवान का पहले दर्शन करूंगा और किसी का दर्शन पहले नहीं करना है मेरे को, मैं रोज भगवान के नाम का जब ये दृढ़ व्रत लेते हैं, यतन करते हैं। यतन तस्य दृढ़ व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, और मुझे प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम करने का मतलब क्या है, नमस्यंत का मतलब क्या है? ना मास, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तुम हो। नमस्ते का अर्थ ये, मैं कुछ नहीं हूं, ना मां मैं हूं ही नहीं कुछ, आप के ये तो महाप्रभु ने हमको सीधी शिक्षा दी है। भजन नाम जपने से पहले क्या करना चाहिए, भूत सिद्धि उसको बोलते हैं। भूत सिद्धि मतलब अपने आप को सिद्ध करना है। भूत क्या, भूत सिद्धि का मतलब हमको भूत लगा हुआ है उससे हमारी जान छुड़ानी है। कौन सा हमको भूत लगा हुआ है, या तो इसका के मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, या इसका के मैं ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं, या इसका के मैं ब्रह्मचारी हूं या सन्यासी, ये सब भूत है, इसकी शुद्धि करनी है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं न मैं सन्यासी हूं, न ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थी हूं, न वानप्रस्थी हूं। भाई आप कौन है आखिर? बोले जब भगवान के भजन में मैं जब बैठता हूं तो मैं गोपी भरत हूं, पद कमल कमल योर दास 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 अनुदास, राधा कृष्ण के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूं। ये जब हमारी कॉन्शियसनेस होगी, जब ये हमारी चेतना होगी भगवान के भजन के समय में, ये दृढ़ विश्वास के साथ हमारी चेतना होगी, तब हमारा भजन भगवान की अंतरंग शक्ति के कान तक पड़ेगा। जब तक मैं ये हूं मैं वो हूं, तब तक भजन हमारा भूत के अंतर्गत है, भूत सिद्धि हुई नहीं है। इस मंत्र का नाम ही भूत सिद्धि मंत्र, और ये जब करने से पहले रोज कहना चाहिए अपने को कि मैं कौन हूं। तो ये आवश्यकताएं हैं कि हमको थोड़ा सा शास्त्र को ठीक तरह से अध्ययन करने का विचार करना चाहिए, अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। महाप्रभु ने इस संसार में कलयुग के लोगों के लिए इन गोस्वामी को जब भेजा तब कहा था, एक काम पहला ये करना कि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियां जितनी हैं वृंदावन के अंदर वो सब लुप्त हो गई, सब गुम हो गई हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कहां थी, आप जाकर उनको पुनः स्थापित करो। अब कैसे पता लगेगा कहां है, वो ठाकुर जी उनको मिले स्वयं, वो राधा विनोद मिले, किसको, लोकनाथ गोस्वामी को, वो झोले में उठा के घूमते थे और ठाकुर जी कहते थे ये मैंने लीला यहां की है, भगवान बताते थे कि ये यहां लीला मैंने की है, ये स्थान है, भगवान ने ही आदेश दिया कि मेरा लीला स्थान जाके ढूंढो, और भगवान ने आके ही अपने स्थान स्वयं बताए। कोई साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से ये वृंदावन की लीला स्थान ऐसे इसलिए नहीं ढूंढी गई आचार्यों के द्वारा। और दूसरा कहा कि सारे वैदिक साहित्य में से भक्ति रतन को निकालो और उसका उसको लिखित रूप में भविष्य के लिए लिपिबद्ध करो, ये दूसरा आदेश था। और तीसरा आदेश था भगवान के बहुत सुंदर और भव्य मंदिर स्थापित करो। ये तीन विशेष कार्य इन आचार्यों को दिए थे। तो इसलिए सात मंदिर स्थापित हुए वृंदावन के आदि मंदिरों में, और सारे ग्रंथ इन गोस्वामी ने बैठ के लिखे, सनातन रूप जीव आदि गोस्वामी आदि ने। और तीसरा काम लीला स्थलियां, ये सब 400 से अधिक 500 से अधिक जैसे वर्णन भी है, ये स्थापित किए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा इस्कान मूवमेंट में चार मूवमेंट है, इस्कान मूवमेंट्स इंक्लूड्स फोर मूवमेंट्स। पहली मूवमेंट संकीर्तन मूवमेंट, संकीर्तन मूवमेंट के दो भाग हैं, हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और दूसरा संकीर्तन मूवमेंट का अंग है पुस्तक वितरण। ये दो संकीर्तन मूवमेंट प्रभुपाद के, पुस्तक वितरण और हरिनाम। इसलिए अगर इस्कान के अर्ली डेज को देखेंगे संस्था के, तो दो भक्त होते थे, दो रोड के ऊपर कीर्तन करते थे, जब लोग इकट्ठे होते थे तो बैक टू गॉड हेड निकाल के वितरण करते थे, जब चार हो गए तो दो कीर्तन करते थे, दो बैक टू गॉड हेड वितरण करते थे, दो भक्त, दो चार पांच नहीं। और केवल केवल भागवत दर्शन पत्रिका से इस्कान बना है, ये समझ लो, केवल भागवत दर्शन पत्रिका के वितरण से इस्कान के अर्ली पांच साल से अधिक केवल भागवत दर्शन पत्रिका के द्वारा इस्कान का, ये इतनी बड़ी संस्था का शुरुआत हुआ है, केवल एक पुस्तक वितरण और हरिनाम संकीर्तन। 8 घंटे भक्त रोज हरिनाम संकीर्तन करते थे रोड के बीच में जाकर, 8 घंटे सुबह शाम में 8 घंटे संकीर्तन चलता था, कीर्तन। मृदंग पीटने वाले हाथ के ऊपर चवानियां आठानियां बांधते थे कि हाथ फट न जाए, हाथ पंगलियां फट जाती थी खून। एक आदमी जाते हुए पूछता है विष्णुजन स्वामी से, ये आप लोग इधर बैठे हुए कुछ काम तो करते नहीं हो। उसने हाथ के ऊपर से ग्लव्स उठाया निकुतारा और हाथ दिखाया तो फटा हुआ हाथ था। उसको आंखों में आंसू आए कि हम तो मजदूरी करते हैं, ऐसे हमारे हाथ नहीं है और इनके हाथ इतने फटे हुए, यहां बोलते मैं कुछ नहीं कर रहा। 8 घंटे कीर्तन करते थे भगवान, इसको बोलते हैं सततम कीर्तन यंतो, जो सदा कीर्तन करते थे। और पर भूख लगती थी और सिंपली वंडरफुल उनकी जेब में होते थे, सिंपली वंडरफुल पहले इस कान में बनते थे, अभी तो सबको भूल गए, मिल्क पाउडर बटर और शुगर, बस इसको मिक्स करते थे, एक दो किशमिश अंदर डालते थे और ऐसे, उसका नाम था सिंपली वंडरफुल। वो 15-20 जेब में होते थे, थोड़ी देर के बाद थक गया, दो गोली खाई, हरे कृष्णा, फिर शुरू हो गया। ऐसे नहीं घर जाएंगे प्रसाद खाएंगे फिर वापस आएंगे, इतना झमेला नहीं करते थे। रात को फिर प्रसाद खाया, फिर जाके 12 बजे तक सिनेमा के बाहर कीर्तन करते थे लोग, एक आदमी के कान में भी गया तो इसका उद्धार हो जाएगा। 12 बजे तक रात को कीर्तन करते थे, यहां तो महीने में एक बार कहते हैं हरि नाम प्रभु जी, मैं तो आ नहीं सकूंगा। उस जमाने का ये स्लोगन था, 2 आवर कीर्तन ए डे कीप्स माया अवे, 2 घंटे रोज जाना है बाहर कीर्तन करना, नहीं तो माया के चक्कर में पड़ जाएंगे, रोज कर नेम कर। तो एक संकीर्तन मूवमेंट और दूसरी डीटी वर्षप, बुक इसमें संकीर्तन का हिस्सा है, दूसरा डीटी वर्षप मूवमेंट, मंदिर स्थापित करके बहुत भव्य भगवान की पूजा प्रतिष्ठा की जाए, ये दूसरा इस्कान मूवमेंट का, दूसरी मूवमेंट विद इन इस्कान मूवमेंट है। तीसरी मूवमेंट का नाम प्रभुपाद ने कहा था स्पिरिचुअल इनिशिएशन मूवमेंट, आध्यात्मिक लोगों को प्रचार करना, जैसे घर घर में प्रचार हो रहा है, कांग्रीगेशन प्रीचिंग हो रही है, ये तीसरा विभाग था, ये स्पिरिचुअल इनिशिएशन मूवमेंट। और चौथी मूवमेंट का नाम था क्लासलेस वर्णाश्रम मूवमेंट, क्लासलेस वर्णाश्रम मूवमेंट। कि जब तक कि इस वक्त इस्कान तीन मूवमेंट के ऊपर काम कर रहा है, अभी संकीर्तन हो रहा है, हरिनाम हो रहा है, पुस्तक वितरण हो रहे हैं, अभी बहुत भव्य मंदिर बन रहे हैं, पूजा हो रही है, अभी भी नाम अपना प्रचार हो रहा है, कांग्रीगेशन बढ़ रही है, लेकिन चौथी मूवमेंट के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। और भविष्य के अंदर ऐसा वक्त आएगा कि ये तम तीन काम करने के लिए हमारे को चौथे की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। प्रभुपाद ने अंतिम समय में कहा था कि मैंने 13 साल में या 12 साल में जैसे आर्मी काम करती है, बॉर्डर के ऊपर लड़ाई होती है तो किसी को भी सेना में भर्ती करके भेजा जाता है, ऐसे मेरे को जो मिला उसको मैंने भर्ती कर दिया, सन्यासी बना दिया, ब्राह्मण बना दिया, काम चलो। लेकिन अब मैं चाहता हूं मैं कल्चरल अब मैं सांस्कृतिक रूप से इसको स्थापित करना चाहता हूं ताकि ये आने वाले 10,000 साल तक दुनिया का मार्गदर्शन करे। तो ये संस्था जो महात्माओं की संस्था है, जो राधा रानी के शरणागत है, वो राधा रानी स्त्री के रूप में आई थी नहीं, चेतना महाप्रभु के रूप में जब आए थे उसका जिन्होंने शरण लिया है सिर्फ, ये ठीक समझ लो, उसका जिन्होंने शरण लिया है सिर्फ। कल जो का आदमी राधा रानी का शरण ले ले ये संभव है ही नहीं, केवल चेतना महाप्रभु का जिन्होंने शरण लिया है। ये बात ठीक तरह नहीं समझ में आएगा, कभी भक्ति मिल ही नहीं सकती है, है ही नहीं भक्ति उसके लिए, उसके लिए भक्ति के नाम में भुक्ति है, वो जितना चाहे उतना भोग कर ले, ये सत्य है। ये नहीं समझ में जब तक आएगा तब तक आध्यात्मिक उन्नति होना संभव नहीं है। कृष्ण और महाप्रभु में क्या अंतर है, हमने आपको बोला कृष्ण महाप्रभु एक ही है, लेकिन फिर भी महाप्रभु में जब कृष्ण के अंदर भक्ति परिपूर्ण रूप से जोड़ देंगे तब महाप्रभु बनते हैं, कृष्ण प्लस भक्ति नैपुण्य महाप्रभु तब बनते हैं, परिपूर्ण भक्ति जिसके अंदर पूर्ण रूप से मिली हुई हो तब कृष्ण महाप्रभु के स्वरूप में आते हैं। इसका मतलब भक्ति देने का कृष्ण भक्ति कब देते हैं, जब महाप्रभु के रूप में आते हैं स्वयं। किराद अदितम निज गुप्त वित्तम, ये जब लिखते हैं हमारे कविराज गोस्वामी कि जो भक्ति बहुत समय से नहीं दी गई थी, भगवान के हृदय का जो प्रेम था, नाम अमृत था, वो महाप्रभु ने आके दिया, और किसी तापी पापी को नहीं देखा, सबको देने के लिए बहुत सरलता से सबको दे दिया है। तो हमारा ये जो आध्यात्मिक आंदोलन है कोई साधारण नहीं है, ये बाहरी महात्माओं का आंदोलन है, और जिसके अंतर्गत जो आते हैं ये देवी प्रकृति के आश्रित हैं, और इसलिए हमको सावधान होके भेदभाव से ऊपर उठ के आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब एक कुल के हैं। कौन सा कुल है, इसको गुरुकुल बोलते हैं, गुरु का कुल है। गुरु कौन, किसका कुल है, ये इस्कान संस्था जो एक गौड़िया वैष्णव के अंतर्गत एक ब्रांच है चेतना महाप्रभु की, उसमें प्रभुपाद जी उसके संस्थापक आचार्य के रूप में गुरु है, उसका ये बहुत बड़ा कुल है। उस कुल के अंदर अंतर्गत हम सब आ जाते हैं, उसके अंदर बहुत से आगे भविष्य में महात्मा आएंगे, काम चलाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा कुल है, हम सब इस कुल के सदस्य हैं। जैसे घर के अंदर बीमारी तब से आई है जब पहले चार भाई साथ रहते थे, चार भाइयों के बच्चे साथ रहते थे, तो चाचा मामा जो थे वो सब ताऊ सब साथ रहते थे, उसको कुल कहा करते थे। अभी कुल किसी का है क्या, अभी कुल कहाँ है, कुल तो है ही नहीं किसी के घर में। कुल मतलब फिर कुल मिला के दो है, हम कुल मिला के दो बोलते हैं, कुल ही नहीं है, इसलिए हमारा दिमाग खराब हो गया है, हम कुल समझ नहीं पाते। कुल उसको कहते हैं जिसका कुटुंब बहुत बड़ा होता था, वो पिताजी बाहर गए कोई बात नहीं, ताऊ जी है हमारा काम तो चलेगा, चाचा जी अपना काम चलेगा, उसको ये चिंता नहीं थी कि पिताजी नहीं है तो हमारा घर बंद हो जाएगा। अभी तो पिताजी के अलावा कोई घर में है ही नहीं, पिताजी घर से चला गया तो अंधेरा हो गया। पहले तो पांच सात सात आदमी चलते थे, अरे पूरे गांव का चाचा बोलते थे पुराने जमाने में, तो उसकी भी कोई समस्या नहीं थी। तो हमारे अंतर्गत जितने भी इस वक्त वर्तमान में इस कान के अंतर्गत जो प्रभुपाद के आज्ञा के अनुसार इस परंपरा को चला रहे हैं, वो सब चाचा ताऊ के समान हमारे लिए हैं, और एक हम एक ही कुल के हैं, इसलिए कैसे भी हमको साथ रहकर जब तक महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत, महाप्रभु का एक और कहना है संग चलो हरि बोलो, संग चलो हरि बोलो, एक दूसरे से कंधा कंधे से मिला के चलो, और तभी हरि बोलो, तभी आपका हरि बोलने का सार्थकता है। तो ये आवश्यकता है कि हम अपने आप को समझें कि हम साधारण संस्था के अंतर्गत काम नहीं कर रहे हैं, हम साक्षात चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है, और जो कलयुग के अंदर विशेष रूप से प्रेम भक्ति देने के लिए आए हैं, उनके परिक्रम के अंतर्गत इस परंपरा में सेवा कर रहे हैं। ये बहुत विशेष दुर्लभ हमको अवसर मिला है, इसलिए इसको छोटी मोटी बातों के अंदर गंवाने का प्रयास नहीं करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने का प्रयास करें, और 25-50-100 नहीं पूरे विश्व के अंदर जितने आदमी उस तक ये पहुंचाना है। जब पृथ्वी से जत्र नगर आदि ग्राम जब महाप्रभु ने कहा है तो पृथ्वी की बात की है, न भारत की बात कही है, न अहमदाबाद की बात की है, लेकिन पूरी पृथ्वी की बात की है। तो इस काम करने के लिए हम सबको और अधिक उत्साह के साथ ये कार्य करना पड़ेगा, बाकी सब कार्यों को पीछे छोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये ठीक तरह समझना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। जो सो रहे हैं उनके लिए छुट्टी, जो जाग रहे हैं वो भोजन करें। धन्यवाद। सोने वाले को मत जगाइएगा। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई जिज्ञासा प्रश्न? हाँ बोलिए।
चैतन्य महाप्रभु ने हर भक्तों को अलग अलग आदेश दिए हैं, जैसे कि कुछ भक्तों को कहा कि तुमने वैदिक भक्ति का प्रचार करो, बस उतना ही करो। किसी भक्तों को कहा कि तुम राग मार्ग भक्ति का प्रचार करो, किसी भक्त को कहा कि तुम हरिनाम का ही प्रचार करो और कुछ मत करो। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या वो भक्त लोग नहीं कर सकते थे ये भक्ति, इसलिए उनको सिर्फ वही दिया गया?
उनका स्वरूप वो था, चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि इनका स्वरूप क्या है, जिसका जो स्वरूप है उसको वो काम देना चाहिए, वही काम उसमें प्रवीणता से कर पाएगा। और यही गुरु की पहचान, गुरु का काम क्या है असल में? गुरु का काम यही है कि अपने शिष्य के अंदर योग्यता देखे और उस योग्यता के अंतर्गत उसको सेवा में लगाए। ये शिष्य गुरु का, इसलिए प्रभुपाद ने कुछ शिष्यों को कहा कि तुम सिर्फ जो है वो मैनेजमेंट को देखो, तुम प्रचार करने जाओ, ऐसे विशेष काम प्रभुपाद ने डिवाइड करके दिया। उन्होंने हर एक के अंदर देखा कि इसके अंदर योग्यता क्या है, उसी को सेवा में लगाना चाहिए। तो स्वरूप को देखते, महाप्रभु उनके स्वरूप को जानते थे, वो इस शरीर को नहीं जानते थे, उसके आत्मा के स्वरूप को भी जानते थे, जो उनकी नित्य लीला में सेवा थी वो दे सकते थे। इसलिए महाप्रभु जानते थे, इसलिए उन्होंने वैसे कहा हम ऐसे नहीं कर सकते, ये हमारा स्तर नहीं है। लेकिन उनका ये स्तर था, वो जानते थे कि उसका क्या स्वरूप है और ये क्या सेवा करेगा जो इसकी सिद्धि है। वो नित्य परिकर जो थे उनको ऐसे आदेश थे, जो साधना सिद्ध थे उनको तो सरलता से चलना था जब तक वो अपने आप को सिद्धि के ऊपर पहुंचा दे। इसलिए हम देखते हैं कहीं सिर्फ फूल माला ही बनाने का उनको काम दिया और कुछ भी काम नहीं था, क्योंकि उनका काम पहले उधर भी वही था, उसी काम से उनका सिद्धि को प्राप्त होती। अभी हमको भी कोई भी एक काम अच्छी तरह से करना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रचारक के लिए अथॉरिटी की आज्ञा माननी चाहिए, जो कहे वो करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का एक कहना था, हमको आर्मी डिसिप्लिन की तरह रहना चाहिए। जनरल कहता है बंदूक चलाओ तो बंदूक चलाओ, कहता है गाड़ी चलाओ तो गाड़ी चलाओ, कहता है रोटी पकाओ तो रोटी पकाओ, ये नहीं कहना है कि मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। भक्त को सब कुछ करना आना चाहिए, और ये भी नहीं पूछना चाहिए कि मैं ये क्यों करूं, कह दिया करो बस जाके करो। पुराने जमाने में तो ब्रह्मचारियों को रात को 1 बजे बोल दिया जो अथॉरिटी ने चलो, तो ये नहीं कहता था मेरा सामान क्या, उनके पास कुछ था भी नहीं, वही रोल करता था अपने स्लीपिंग बैग उठ के रवाना होता था, कहाँ जाना है कुछ जेब में कुछ नहीं सोचता था। और फिर रास्ते में खड़े होते थे, कोई लिफ्ट ले आ, फिर आगे चले गए, फिर प्रचार करना है वो 15 दिन के बाद वापस आना है, ये नहीं पूछते थे कहाँ जाना है और क्या करना है, मुझे पूछते ही नहीं थे, पूछना पूछने की जरूरत नहीं। जिसका हमने शरण ले लिया वो जैसे कहता है वैसे करना है, हमको पूछने का हमारी कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसा जब भाव था तब ये संस्था स्थापित हुई। लोगों ने क्या क्या किया है, आप जा उन दिनों के भक्तों के चरित्र को पढ़ के देखो कि उन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी उन लोगों ने कुर्बानियां दी, ये जब देखेंगे तब हमको अनुभव होगा। तो हमको तो बने बनाए मंदिर मिले हैं, बड़े बड़े सब सुख सुविधाएं मिले हैं, हमको पास कुछ भी नहीं था। सर्दियों के अंदर बर्फ को ऊपर से तोड़ के न्यू वृंदावन में बर्फ को हटा के उसके अंदर से पानी नीचे से उठा के और नहाते थे, जमा हुआ बर्फ के ऊपर मर्फ हटा के उस पानी से नहा के सुबह मंगल आती 4 बजे जाते थे। उन भक्तों का उस दिन का उस जमाने की हिम्मत को देखिए ना। अब तो गीजरवा है तो भी नहाने की जरूरत नहीं, हाथ पांव धोते हैं काम चल जाएगा। वो उत्साह चाहिए, और वो उत्साह देने के लिए लीडर चाहिए जो इतना उत्साह दे सकता है। और प्रभुपाद में ये महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की शक्ति ऐसा थी कि उन्होंने उत्साह उन सबको दिया और ये काम कर लिया। ये उत्साह से ही काम होता है, जब उत्साह होता है तब उत्साह चाहिए इसके लिए, उत्साह धैर्य, यही तो रूप गोस्वामी की शिक्षा है कि उत्साह चाहिए पहले। तो फिर हमारे वहां उत्साह का मतलब जिसमें सांस है उसमें उत्साह होगा, मरा हुआ क्या उत्साह करेगा? तो जो जिंदा होगा तब उत्साह होगा ना। और जिंदा कौन है? जो प्रचार करता है वो जिंदा है, बाकी सब मुर्दे हैं। प्रचार नहीं करता है वो मुर्दा है, वो जिंदा है ही नहीं। खा पी रहा है उसमें क्या पड़ा? सांस ले रहा है वो तो लोहार के पास धमड़ होता है, वो भी हाँ हाँ फां फां करता है, उसे क्या पड़ रहा है? ये शास्त्र की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए हमें बहुत सीरियस होना चाहिए। जिंदगी बाकी है कितनी? कोई 25 साल जिएगा, कोई 15 साल जिएगा, कोई 28 साल, कोई 48 साल, इससे ज्यादा कोई जीने वाला है नहीं। तो कब भगवान का है? एक कुछ भक्तों को प्रभुपाद ने ऐसे कहा लिया, बहुत सी तुम्हारी जिंदगी है, तुमने जो चाहा वो किया, एक जिंदगी तो भगवान को दे दो कम से कम, ये एक जिंदगी तो दे दो। तुम्हारे को बहुत और जिंदगियां पहले मिली है, तुमने जो चाहा वो किया, एक जिंदगी भगवान को अर्पण तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? प्लीज कहका प्लीज गिव दिस वन लाइफ टू कृष्ण एंड सी द डिफरेंस, देखो क्या अंतर पड़ता है तुम्हारे जीवन में। और जिन्होंने एक जीवन दिया वो आज ध्रुव की तरह आसमान में चमक रहे हैं। एक जीवन जिन्होंने भगवान को दिया वो ध्रुव की तरह आसमान में चमक रहे हैं, और नहीं तो कई जन्म। सुबह यशोमत नंदन हम कह रहे थे हम चाहते हैं कि हम खाएं कम, लेकिन जब खाने बैठते हैं कहते हैं फ्रूट खाएंगे, खाने बैठते हैं तो फिर इडली भी खा लेते हैं, डोसा भी खा लेते हैं। तो हमने कहा दीन बंधु जी कहते हैं एक संस्कृत का श्लोक है, उसका मतलब है भूस्व महाबुद्धि दुर्बुद्धि खाओ, पर अनम दुर्लभम, पराया खाने का माल मिलना बहुत मुश्किल है। शरीर पुनः न पुनः, शरीर तो कई बार मिलेगा कोई परेशानी है, पर खाना मिलना मुश्किल है, इसे दबा के खाओ। पर अनम दुर्लभम शरीर आनी पुनः पुनः, शरीर को बार बार मिलता है उसमें कौन सी परेशानी है, पर माल बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी अभी 15-6 महीने 12 महीने के बाद जब आएंगे तब कोई एक बार बुला के खिलाएगा, इतना इंतजार करना पड़ेगा, जन्म तो कई बार पहले लिए इसलिए दबा। असल में हमारा स्वरूप क्या है उसके अंतर्गत सेवा करना अच्छा है, और हरेक का ये स्वभाव देखते थे, गुरुजनों का यही काम था। तो प्रसाद लीजिए, लेट हो गए, लेट के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन फिर भी आप सब लोग इधर तक बैठे, आप उत्साह के साथ 5-10 मिनट कीर्तन कीजिए, नहीं तो भक्त अवतार नाराज हो जाएगा। आप कीर्तन कीजिए, प्रभु विचारो जी आप कीर्तन कराइए 5 मिनट के लिए, ठीक है, जब तक सब जाग जाए सब कीर्तन होना चाहिए, पड़ोसी जागे लेकिन यहाँ नहीं आए ऐसे जागे, अपने घर में ही रहे। चलो
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे।